Шилэл. Шилэл. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवव्रत रतन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको याद दिला दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। आज हमारी बातचीत एक बार फिर मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा जी के साथ होगी। प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा जी के साथ प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हैं। ईमेल, वेबसाइट, डाटाबेस, फेसबुक पृष्ठ को लेकर हिंदी सचिवालय पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इस पर बात करें।
जी, मैं तो कहूँगा कि ये तकनीक का युग है और हिंदी तकनीक में पीछे न रह जाए, इसलिए हमारा अपना वेबसाइट बना हुआ है और अब तो बिल्कुल अधुनातन रूप में आ गया है, उसका रिवैम्प कर दिया गया है और फेसबुक पेज उसका है, बल्कि एक नहीं दो दो फेसबुक पेज है। एक महासचिव के नाम से है, एक विश्व हिंदी सचिवालय के नाम से दो फेसबुक है। हमारा ट्विटर अकाउंट है, हम कोई महत्वपूर्ण घटना होती तो हम उसे ट्वीट करते हैं जी। और अगर आप देखें तो दुनिया में बने रहने के लिए इससे खूबसूरत स्थिति क्या होगी कि अभी कोई घटना घटी है, क्षण भर में आप दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो तकनीक का बेहतर इस्तेमाल सचिवालय करता है और पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक पेज के माध्यम से। और अभी पिछले कोरोना पीरियड में हमने वैश्विक हिंदी परिवार के रूप में एक आभासी मंच बनाया जिसमें सचिवालय की उपस्थिति, जिसमें सचिवालय बढ़ चढ़ के, और आपको आश्चर्य होगा कि सैकड़ों कार्यक्रम हमने किया इस पेंडेमिक में। हमने ये महसूस नहीं होने दिया कि हम कमरे में बंद हैं, हमने आभासी मंच के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज की। मैं तो ये कहूँगा कि अपनी धमक हमने कायम की, हम छिपे नहीं, हम प्रकट हुए, सामने आए, सबके सामने आए।
इसके अलावा आप ही ने क्षितिज कार्यक्रम की व्यवस्था की है जिसे हिंदी प्रेमी किसी भी देश से सर्वर के माध्यम से सुन सकते हैं।
जी, ये भी एक बड़ी घटना है और मैं तो MBC के प्रति सचिवालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा, भारत सरकार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपके यहाँ हमने एक छोटा सा विनम्र निवेदन किया था कि क्या विश्व हिंदी सचिवालय को भी कोई स्लॉट मिल सकता है, और सहर्ष MBC ने हमें एक स्लॉट दिया, भले पाक्षिक हो लेकिन क्षितिज के माध्यम से। हमने ये तय किया कि हिंदी का क्षितिज इस क्षितिज के माध्यम से परिभाषित हो और निरंतर वो कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसके माध्यम से हम आकाशवाणी के जरिए पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, और उसमें भी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि निरंतर आप इस काम में लगे हुए हैं और सबको जोड़ रहे हैं। तो MBC के प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति कृतज्ञता, और जितने इसमें जुड़ते हैं वक्ता शामिल होने वाले लोग उनके प्रति बिल्कुल विनयावनत भाव से सचिवालय कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेगा। और रेडियो के जरिए भी हम पूरी दुनिया में पहुँचें, क्योंकि हम कहते हैं ना शब्द का नाश नहीं होता जी। तो शब्द का सचमुच नाश नहीं होता, वो रेडियो धर्मी तरंगे उसे पकड़ती हैं और लेकर के पूरी दुनिया में उसका प्रसारण करती हैं। इसलिए इस धरती का एक और ऋण हो गया सचिवालय के ऊपर कि इसकी आवाज़ सुरक्षित हो गई।
प्रोफेसर साहब, आपके कार्यकाल के अंतर्गत सचिवालय ने हिंदी प्रेमियों, हिंदी के छात्रों व साहित्यकारों के प्रशिक्षण से संबंधित अनेक गोष्ठियाँ लगाई।
जी, सचिवालय की निरंतर कोशिश रही है कि सचिवालय अपनी उपस्थिति हर रूप में दर्ज करे, चाहे विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम हो, कार्यशाला हो, चाहे जो नवोदित लेखक हैं उनके लिए कार्यशाला हो लेखन को लेकर, चाहे ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के अकादमिक कार्यक्रमों का आयोजन हो, सब में सचिवालय ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ताकि यहाँ होने का लाभ यहाँ के लोगों को मिले, और जो कार्यक्रम होगा उसको हम अपने वेबसाइट पर, अपने संचार माध्यमों के जरिए पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो एक बड़ा काम हुआ है, और एक होता ना कि संस्था अपनी उपस्थिति इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए दर्ज करती है और वैश्विक स्तर पर उसका प्रचार और प्रसार करती है, इसमें सचिवालय बहुत हद तक सफल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत कुछ किया जाना चाहिए था
जी,
बहुत कम हुआ है, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं और हम हिम्मत नहीं हारने वाले हैं, और हिंदी के लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। निश्चित रूप से अंधेरा छटेगा और हिंदी का सूरज उदित होगा पूरे विश्व में।
सर, आप अच्छे वक्ता हैं, सुनने वाले आपसे आत्मविभोर हो जाते हैं, आप में ये दीन कहाँ से आई?
नहीं अच्छा वक्ता नहीं, डॉक्टर साहब है क्या कि मैं अध्यापक हूँ पेशे से, और पारिवारिक पृष्ठभूमि वही रही है कि अध्यापक पुत्र हूँ, तो बचपन से भाषा का संस्कार और साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो शब्दों को जोड़ लेता हूँ, तोल मोल करके बोल लेता हूँ, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि जब मैं बोलूँ तो लोगों के मन तक पहुँचूँ, लोगों को गुदगुदाऊँ, हंसाऊँ, रुलाऊँ भी भावनात्मक रूप से, और साहित्य का कर्म यही है कि हम आपके साहित्य अतीत वर्तमान और भविष्य को जोड़ करके हमारी झोली में जो कुछ डालता है वो एकदम अमृत फल की तरह होता है। और अध्यापक होना भी चाहिए, वक्तृता आप में हो, ज्ञान आप में हो, शिक्षा आप में हो, विद्या आप में हो, भाषा आप में हो, तो समाज को सरस बनाएं, यही उद्देश्य है। बाकी बस एक अध्यापक हूँ तो अध्यापकीय विद्या, अगर वो बोलेगा नहीं तो जिएगा कैसे,
अध्यापक का काम है बोलना
जी।
सचिवालय की पत्रिका हो, त्रैमासिक सूचना पत्र हो या फिर समाचार पत्र हो, सभी में आपका संपादकीय लेख भी जोड़ रहा, इस पर दो शब्द बताइए।
असल में संपादकीय किसी भी पत्र या पत्रिका का प्राण तत्व होता है, और जब हम संपादकीय लिखते हैं तो संपादक का जो विचार पक्ष है वो उसमें झलकता है, ऐसा न हो कि विचार पक्ष बोझिल हो जाए, इसलिए उस विचार पक्ष में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर हों जिसके निदान की ओर संकेत हो, कुछ यक्ष प्रश्न हो जिसका उत्तर समय के गर्भ में छिपा हो, उसे बाहर आने के लिए। तो मेरी कोशिश निरंतर ये रही है कि जो भी संपादकीय लिखा जाए वो भाषा को लेके, संस्कृति को लेके, साहित्य को लेके लिखा जाए, और लोगों तक जब आप उसे पढ़ें तो आपके मन पर कुछ प्रभाव छोड़े, आपके मन में कुछ प्रश्न पैदा करें,
प्रश्न भी छोड़े
जी। और जब तक प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आप, उत्तर कहाँ से आएगा। और हम तो उपनिषद की परंपरा के हैं, हमारे यहाँ विमर्श को स्थान दिया गया है, प्रश्न आप पूछें उत्तर हम दें, और ये परंपरा चलनी चाहिए, निरंतर चलनी चाहिए, यही हमारी उपनिषदीय परंपरा है, और विमर्श के सहारे ही वैचारिकी को आगे बढ़ाया जाता है। और हमने यही कोशिश की कि संपादकीय के जरिए हमारी जो वैचारिकता है, हमारी मतलब सचिवालय की जो वैचारिकता है, हिंदी जगत की जो वैचारिकता है, वो लोगों तक पहुँचे और सहज सरल रूप से पहुंचे, कोशिश यही रही है।
प्रोफेसर साहब, आपने विश्व हिंदी समाचार के त्रैमासिक सूचना पत्र में लिखा है, उदाहरण देता हूँ, तो ये जगत विदित है कि भाषा की कड़ाही में पककर ही शिक्षा हिरणमय और चिन्मय की यात्रा कराती है। भाषा की संस्कृति आधार का मूल्यांकन केवल उसके संप्रेषण और उसकी रचना की कम सामयिकता से नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके सांस्कृतिक आधार की सुदीर्घ व गौरवशाली परंपरा का भी मूल्यांकन आवश्यक है।
जी, ये बहुत अच्छी पंक्ति आपने पकड़ ली, वो समसामयिकता की बात हम कर रहे हैं उसमें, और देखिए भाषा की कड़ाही में ही पक करके, देखिए हमारी जो यात्रा है, स्वयं की जो यात्रा है, हम मृण्मय से हिरण्मय फिर चिन्मय की तरफ जाती है यात्रा, हम धरती में पैदा होते हैं, हिरण्य में बनते हैं, स्वर्णमय बनते हैं, फिर चिन्मय की यात्रा करते हैं, ये जो स्टेप है, ये जो स्तर हैं, और भाषा के साथ भी वही है, जी भाषा के साथ भी वही है, भाषा की कड़ाही में ही शब्द जब पकते हैं तो साहित्य का सृजन होता है, वो साहित्य आपके हृदय तक सीधे पहुँचे तब आप, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बिना संस्कृति को जाने, बिना परंपरा को जाने, बिना भाषा के संस्कार में पले बढ़े आप न तो साहित्य सृजन कर सकते हैं, न दूर तक, या जिसे कहते हैं ना कि कालजयी सृजन नहीं हो सकता है, बहुत दिनों तक लोगों के दिल और चित्त में आप स्थापित नहीं हो सकते अगर ये संस्कारित तो भाषा न हो
जी,
अगर इस तरह का साहित्य न हो जो कहीं ना कहीं अपनी धरती का उपजा हुआ हो। इसलिए बार बार हम संस्कृति की दुहाई देते हैं, बार बार हम परंपरा की दुहाई देते हैं, और भाषा तो मूल है ही, तो भाषा की कड़ाही में जो चीज़ें पकें तो वो बिल्कुल जिसको नहीं बोलते हैं कि अवलेह की तरह जो पक कर के बाहर आए, या एसेंस के रूप में बाहर आए, अर्क जिसे कहते हैं, फिर वो आप तक पहुँचे जिस रूप में, चाहे सुगंध के रूप में, चाहे आपके जिह्वा का स्वाद बढ़ाए, चाहे आपके आत्मा का स्वाद बढ़ाए, लेकिन बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा
जी। आपका विशेष अध्ययन और विशेषज्ञता मध्यकालीन साहित्य पर आधारित है, इस पर दो शब्द बताइए।
असल में मैं मानता हूँ, मैं क्या, हिंदी की पूरी दुनिया मानती है कि अगर हिंदी साहित्य से मध्यकाल निकाल दीजिए तो शून्य हो जाएगा
जरूर,
और उस मध्यकाल ने क्या नहीं दिया आपको, दुनिया की बड़ी रचनाएं दी, तुलसी जैसा कालजयी कवि होता है, कबीर जैसा क्रांतिकारी कवि होता है, सूर जैसा वात्सल्य श्रृंगार के कोने कोने के झांकने वाला आता है, रसखान जैसा कृष्ण भक्त होता है, मीरा जैसी गायिका पैदा होती हैं, ऐसे समय में और उन संतों ने विपरीत परिस्थितियों में सृजन कर्म किया। उन्होंने राजसत्ता का तिरस्कार किया। जब कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जकर मुंह देखत पाप परत हैं ताको करण परत सलाम। फतेहपुर सीकरी राजधानी थी, बोले संतों को वहां जाने की क्या जरूरत है, आते जाते पनही मन जूता टूटेगा और जिसका मुख देखने से पाप लगता है उन्हें सलाम करना पड़ेगा। तो राजसत्ता से दूर बैठ करके केवल साहित्य सृजन, जिसे कहते हैं ना कि समाज के लिए साहित्य लिख रहे हो, जनता के चित्रवृत्तियों को परिभाषित कर रहे हो, ऐसे साहित्यकार मध्यकाल में इतने कवि पैदा हुए। और चूंकि मेरे प्रिय कबीर तुलसी रहे हैं, उन्हीं पर मैंने शोध कार्य किया है, तो उससे इतर में कुछ सोचता ही नहीं। तो कहते हैं कि राम तुम्हारा वृत्ति स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो तुलसी अगर कवि बनते हैं तो मैथिलीशरण गुप्त तो कह चुके कि राम का चरित्र जो भी लिखेगा वो तो स्वयं कवि बन ही जाएगा। तो राम से इतर है नहीं, और राम हमारे सांस्कृतिक पुरुष हैं
जी,
राम हमारे संस्कृति के प्रतीक हैं,
आदर्श
जी, आदर्श पुरुषोत्तम है वो। वो राजा नहीं है, वो बन गए, जब वन गए तब बन गए, वन गए तब बन गए,
जरूर।
अयोध्या में रहते तो राजकुमार रहते, राजा होते, लेकिन जब जंगल जाते हैं तो पुरुषोत्तम हो जाते हैं, हमारे भगवान हो जाते हैं। तो ऐसे राम के चरित्र को तुलसी परिभाषित करते हैं, ऐसे राम को केंद्र में रख के कबीर लिखते हैं, ऐसे कृष्ण को केंद्र में रख के सूर लिखते हैं, और सूर के समकालीन तमाम अष्टछाप के कवियों ने बहुत कुछ लिखा। तो ऐसे रामकृष्ण की धरती का होना और मध्यकाल में उनके चरित्र को महनी ऊंचाई पर जिन कवियों ने पहुंचाया, उन कवियों के प्रति बिल्कुल श्रद्धावनत हूँ, और वो मेरे प्रिय हैं। और मध्यकाल जो कि प्रिय विषय रहा है, और काशी की परंपरा में मध्यकालीन काव्यों को, साहित्य को पढ़ाने वाले जिन गुरुओं ने दिया ज्ञान, ऐसा संभव नहीं था। वो काशी की परंपरा थी, आज भी वो गुरु याद आते हैं। तो मुझे स्वयं तुलसी याद आते हैं कि एक शूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ।
विरासत के रूप में आपको छोड़ गए, आपको दे गए
जी। तो हम तो उन्हीं की देन हैं, जिसे कहते हैं ना क्लोनिंग जैसे हो जाती है कि गुरु अपने शिष्य में अपना कुछ दे देता है। तो मैं ऐसा विवेकानंद नहीं हूँ जो कि हमारे सर पर अगर हाथ रख दे और मैं चमत्कृत हो जाऊँ, लेकिन हाँ, उन गुरुओं के चरण में रखे, वही उपनिषद की परंपरा, जो कुछ सीखा और चाहता हूँ कि अपने ही विद्यार्थियों को दे करके चला जाऊँ। और मेरा तो पूरा जीवन पूर्वोत्तर भारत में बीता है, जनजाति विद्यार्थियों को पढ़ाया मैंने। वो तो मैं मंचों से कहता हूँ कि हमने अर्जुन नहीं पैदा किए हो, क्या वो एकलव्य तो पैदा किया ही हमने।
लगे हाथ आप अपनी कुछ कृतियों का उल्लेख कीजिए सर।
असल में जो मेरा शोध कार्य है कबीर तुलसी पर है, तो भक्तिकालीन कवियों की साधना पद्धति, उस पर हमारी एक पुस्तक है साहित्य के निकष पर कबीर और तुलसी, कबीर पर एक स्वतंत्र रूप से पुस्तक है, और मध्यकालीन काव्य चिंतन है। इसके अलावा आधुनिक कवियों में शमशेर हैं, रघुवीर सहा हैं, नागार्जुन हैं, धूमिल हैं, इन सब पर मैंने लिखा है और खूब पढ़ा है। दिक्कत क्या होती कि जब तक आप भरेंगे नहीं तब तक छलकेंगे नहीं, तो भरना पढ़ना होता है। जब आकंठ पढ़ लें, डूब जाएं, पी लें, तब छलकें, तो ये जो छलक करके जो बाहर आता है वही आप दे पाते हैं। रीते घड़े से छलकता नहीं कुछ, घड़े को भरना होगा, फिर भरने के बाद जो छलकेगा वो समाज को आप दे पाएंगे। तभी तो मैं खुद रीता घड़ा हूँ, अभी तो पढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, भर रहा हूँ। छलकेगा छलकेगा छलकना
तो शुरू हो गया,
छलकेगा ही, समय आएगा। अभी तो मैं इस मामले में शैशवावस्था में, लेखन के मामले में अभी बहुत कुछ लिखा जाना है। यहाँ के 5 वर्षों का ये एक मेरे जीवन का बड़ा कालखंड है, यहाँ मेरा बीता है। यहाँ से जाकर के जब कुछ लिखूंगा वो मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए यहाँ का जो जीवन है, क्योंकि इस देश को मैंने जिया। अगर कोई कहता हो कि नहीं आपने तो 5 वर्ष दिए, नहीं, मैंने लिया इस देश से 5 वर्ष, और प्रसन्नतापूर्वक जो मिले अच्छे मिले।
प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। आज आप विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को सुन रहे थे। ये कार्यक्रम का दूसरा भाग था। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोगी मित्र सुनील लक्ष्मण जी का सहयोग से प्राप्त हुआ, जिनको हम धन्यवाद देते हैं। आप श्रोताओं को भी धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को जाता है। नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।